Jai Radha Madhava Kunja Bihari.
यह प्रवचन चंदन यात्रा महोत्सव पर श्री श्री राधा कुंज बिहारी मंदिर पुणे में 24 अप्रैल 2004 को श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज द्वारा दिया गया।
गोपी जाना बाला भारा धारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
पिछले दो दिन से चंदन यात्रा उत्सव शुरू हुआ है और ये उत्सव चलेगा 21 दिनों के लिए, तो मैंने सोचा कि आज चंदन यात्रा किस प्रकार से आरंभ हुआ और इसके पीछे जो इतिहास है उसकी चर्चा की जाए। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान हैं जो कि अवतारित हुए थे लगभग 520 साल पूर्व। उनके गुरु जी का नाम था ईश्वरपुरी। ये जो चंदन यात्रा का उत्सव है ये आरंभ हुआ था माधवेंद्रपुरी जी के द्वारा आज से लगभग अंदाजा 700-750 साल पूर्व। माधवेंद्रपुरी बहुत ही ऊंची कोटि के भक्त है, अद्वैताचार्य जो कि परम भगवान महाविष्णु के अवतार हैं उनके भी गुरु थे। चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट हुए नवद्वीप में, पर उससे पहले अद्वैताचार्य जी प्रकट हो चुके थे हरिदास ठाकुर के साथ और दोनों कीर्तन करते थे, शालिग्राम की उपासना और ये प्रार्थना की थी कि हे भगवान आप स्वयं अवतारित हो जाओ पतितों का उद्धार करने के लिए। तो माधवेंद्रपुरी अद्वैताचार्य के भी गुरु थे, बहुत ऊंचे कोटि के संत थे। एक समय चैतन्य महाप्रभु जी गए थे गोपीनाथ जी किशोर गोपीनाथ के मंदिर में रेमुना उड़ीसा में, और इस पूरी लीला का वर्णन बड़े सुंदर रूप से कृष्णदास कविराज जी ने किया है चैतन्य चरितमृत नाम के ग्रंथ में, और वृंदावन दास ठाकुर ने भी किया है चैतन्य भागवत नाम के ग्रंथ में। तो महाप्रभु जी जब गए गोपीनाथ के मंदिर में तो बड़े एक उत्साह से नाचे गाए भगवान की प्रशंसा के लिए। जब कीर्तन में हम नाचते और गाते हैं, हम नाचते और गाते हैं भगवान की प्रशंसा के लिए। जैसे कि आपके शहर में रथ यात्रा उत्सव मनाया गया था थोड़ी देर पहले, जिसमें आप सब नाच रहे थे और गा रहे थे जगन्नाथ जी की प्रशंसा के लिए। तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं नाच रहे थे भगवान किशोर गोपीनाथ जी की प्रशंसा के लिए, जबकि जबकि एक हार जो भगवान ने पहना था किशोर गोपीनाथ ने वो गिर गया महाप्रभु जी के पर, और महाप्रभु जी बड़ा आनंद महसूस किया और फिर उन्होंने उस लीला का स्मरण आरंभ किया जो कि इस चंदन यात्रा से संबंधित है। तो माधवेंद्रपुरी जैसे हमने कहा महाप्रभु जी के परम गुरु थे और बहुत ही ऊंची कोटि के संत थे, दिन रात भगवान का गुणगान करते रहते थे, थोड़ी देर के लिए सोते थे और खाने के लिए अगर किसी ने कुछ दे दिया तो खाते थे और अगर किसी ने कुछ नहीं दिया तो भूखा रहते थे। हर स्थिति में संतुष्ट थे। भगवान के जो भक्त हैं हर स्थिति में संतुष्ट रहते हैं, आदर अपान सुख दुख सर्दी गर्मी। तो माधवेंद्र पुरी दिन रात भगवान का गुणगान करते थे। और एक दिन उन्होंने गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की थी, और गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करके थोड़े से थक गए थे। शायद आप में से कई भक्तों ने गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की है। तो जब गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा आप करते हो, 4-5-6 घंटे लगते हैं, तेजी से चलो तो 4.5-5 घंटे, धीमे धीमे चलो तो 5-6 घंटे, और अगर हर स्थान में आप लीला सुनना चाहते हो तो 15-20 घंटे भी लग सकते हैं। हमारे एक दीना बंधु प्रभु हैं वृंदावन मंदिर में, वो जब गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं तो लोगों को 12-12 घंटे ले जाते हैं, क्योंकि हर स्थान में वो लीला भी सुनाते हैं। तो माधवेंद्र पुरी ने गोवर्धन की परिक्रमा समाप्त की और गोविंद कुंड में थोड़ा सा विश्राम कर रहे थे एक वृक्ष के नीचे। थोड़े भूखे थे पर वो कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे। तो जब वो विश्राम कर रहे थे तो एक बहुत ही खूबसूरत बालक ग्वाला एक मटके में दूध लेकर पहुंचा उनके पास। और इस ग्वाले ने कहा कि मैं ये दूध लाया हूं तुम्हारे लिए, मुझे लगता है तुम भूखे हो, ये दूध को पीजिएगा। माधवेंद्र पुरी एक तो इस बालक की खूबसूरती को देखकर बहुत ही आकर्षित हो गए थे, उन्होंने कभी इतने खूबसूरत बालक को देखा नहीं था। और फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं भूखा हूं, किसने कहा तुम्हें, किसने ये सूचना दी? बालक ने कहा कि मेरे गांव की औरतें कुएं में जा रही थी पानी लाने के लिए, और आपके चेहरे को देखकर उन्हें लगा कि शायद आप थोड़े भूखे हो, तो मुझे उन्होंने भेजा इस दूध के साथ, और आप इस दूध को पी लो और मैं थोड़ी देर में आता हूं इस मटके को वापस ले जाने के लिए। तो माधवेंद्र पुरी ने दूध पी लिया और वो राह देख रहे थे कब आएगा वो ग्वाला मटका लेने के लिए। तो ग्वाला लौटा ही नहीं मटका लेने के लिए। तो फिर राह देखते देखते उनको नींद आ गई। जब नींद आ गई तो उन्होंने वो ही ग्वाले को सपने में देखा, और उस ग्वाले ने सपने में कहा कि मुझे उन झाड़ियों के नीचे दबाया हुआ है और मुझे वहां बहुत गर्मी लग रही है, तुम कृपा करके मुझे उस स्थान से निकालो, स्नान करवा के मेरी स्थापना कराओ। तो माधवेंद्र पुरी ने जब ये सपना देखा, एक रूप से तो खुशी हुई इस विषय पर कि उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ था, है कि नहीं? भगवान का दर्शन तो केवल भाग्यशाली व्यक्तियों को ही प्राप्त होता है। वो दूसरे तरफ से माधवेंद्र पुरी के हृदय में दुख आ गया था। क्या क्या दुख था? कि भगवान से उन्होंने सेवा ली, भगवान ने आकर उन्हें दूध पिलाया, भगवान से सेवा ली उन्होंने। भगवान के जो भक्त हैं वो किसी स्थिति में भी भगवान से सेवा नहीं लेना चाहते, पर भगवान की सेवा करना चाहते हैं। वैसे तो कई बार हम भगवान के शरण में आते हैं हमारी भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए। गीता में भी भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के व्यक्ति मेरी शरण में आते हैं, है कि नहीं? छात्र विदा भजन्ते माम, एक है जैसे धन चाहिए, दूसरा है जिज्ञासु, तीसरा है ज्ञानी, चौथा है रोगी पीड़ित व्यक्ति। चार परिस्थितियों में व्यक्ति मेरी शरण में आता है। पर ऊंची स्थिति का ये भाव है कि हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, सेवा लेना नहीं चाहते। जैसे कि दो प्रकार की सेवाएं हैं, कई हैं जो कि निष्काम भाव में जुड़ते हैं, कई हैं जो कि साकाम भाव में जुड़ते हैं। जो साकाम भाव में जुड़ते हैं उन्हें कुछ चाहिए, या योगिक सिद्धि चाहिए, या मुक्ति चाहिए, या भुक्ति चाहिए। पर जो निष्काम भाव से जुड़ते हैं उनकी इच्छा रहती है सेवा में जुड़े रहें हर जन्म में। जैसे कि चैतन्य चरितमृत में कहा गया है, कृष्ण भक्त निष्काम आते एव शांता, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकारी अशांता। कृष्ण भगवान के जो निष्काम भक्त हैं वो हर स्थिति में शांत रहते हैं, और इसकी तुलना में जो सकाम भाव से जुड़ते हैं वो सदा अशांत रहते हैं। तो अगर हमें शांति चाहिए तो हमारा भाव होना चाहिए निष्काम भाव से भगवान की सेवा में जुड़ना। तो माधवपुरी ये सेवा कर रहे थे भगवान की निष्काम भाव से। तो जब उन्होंने उसी ग्वाले को सपने में देखा तो उनके हृदय में ये दुख पहुंचा कि उन्होंने भगवान से सेवा ले ली, क्योंकि भगवान लाए आए थे ग्वाले के रूप में उन्हें दूध पिलाने के लिए। अगले दिन सुबह माधवेंद्रपुरी ने इस सपने की चर्चा की ब्रिजवासियों के साथ। ये जो विग्रह था इनका नाम था गोपाल विग्रह, और इस मूर्ति की स्थापना की थी वज्र, जो कि भगवान श्री कृष्ण के पोते थे। और आज ये गोपाल की जो विग्रह है वो नाथ द्वारा में इसकी उपासना की जा रही है। पर आप पूछना चाहोगे क्यों इन मूर्तियों को दबा दिया था मिट्टी के नीचे, इनकी तो पूजा हो रही थी मंदिर में। कहा जाता है कि जब मुसलमानों का राज्य हुआ था उत्तर भारत में, तो उस समय मुसलमान राजाओं ने कई बड़े बड़े मंदिरों को उखाड़ दिया था, और जो पुजारी थे इन मंदिरों के उन्होंने मूर्तियों को बचाने के लिए क्या किया, या इन्हें दबा दिया या उठा कर ले गए वृंदावन से कहाँ, जयपुर में। इसलिए आपके जयपुर शहर में आज अनेक प्रसिद्ध वैष्णव मंदिर हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कौन सा है, राधा गोविंद जी का। और उस समय जयपुर में हिंदू राजा था जिसने इन मंदिरों की सुरक्षा की, इसलिए जयपुर को गुप्त वृंदावन भी कहा जाता है, कि वहाँ अनेक ब्रज के मूर्तियों की उपासना की जा रही है आज भी। तो कई मूर्तियों को ले गए उठाकर जयपुर में, और कईयों को पुजारियों ने छुपा दिया मिट्टी के नीचे। तो अगले दिन सुबह सारे ब्रिजवासियों ने कहा कि अगर माधवेंद्रपुरी को ये सपना आया है तो हमें जाके देखने दो सपना ठीक है कि नहीं। सब गए और उसी झाड़ी जिसका वर्णन भगवान ने सपने में किया था उसी स्थान में गए और खोदने लगे। जब वो खोदने लगे फिर नीचे क्या देखा, वही गोपाल का विग्रह जिसके विषय में भगवान ने सपने में सूचना दी थी। तो माधवेंद्रपुरी और ब्रिजभासी बहुत ही प्रसन्न हुए ये देखकर कि सपना सत्य था। और फिर माधवेंद्रपुरी ने उस विग्रह की स्थापना की गोवर्धन में। स्थापना के लिए अनेक भक्तों को जोड़ा। अक्सर कहा जाता है जब किसी शहर में राधा कृष्ण विग्रह की स्थापना हो तो पूरे शहर को उनकी सेवा में जुड़ना चाहिए। जैसे कि आपके पूना शहर में आपके श्री श्री राधा कुंज बिहारी हैं, तो पूरे शहर को, पूना वासियों को, सबको श्री श्री राधा कुंज बिहारी की सेवा में जुड़ना चाहिए। कहा जाता है कि जो मूर्तियां हैं वो बन जाती हैं असली मालिक उस शहर के संपत्ति का। इसलिए प्रभुपाद जी ने जब लंदन में इंग्लैंड में हमारे कई मंदिर हैं, एक है भक्तिनंद मैनर और एक है बिल्कुल शहर के बीच में सोहो स्ट्रीट, बॉम्बे में फ्लोरा फाउंटेन है, वैसे उस प्रकार के स्थान में। और जब प्रभुपाद जी ने उन मूर्तियों की स्थापना की तो उनका पता क्या नाम दिया? श्री श्री लंदन ईश्वर। श्री श्री लंदन ईश्वर मतलब कि ये जो मूर्तियां हैं ये लंदन शहर के ईश्वर हैं, मालिक। और प्रभुपाद जी ने जब पेरिस में मूर्तियों की स्थापना की थी तो उन्होंने कहा श्री श्री पेरिस ईश्वर। तो आपकी जो राधा कुंज बिहारी मूर्तियां हैं इनके दो नाम हैं, एक है श्री श्री राधा कुंज बिहारी, एक है श्री श्री पूना ईश्वर। तो आपके पूना शहर के सारी संपत्तियों के असली मालिक। तो माधवेंद्र पुरी ने जब गोपाल मूर्ति की स्थापना की तैयारी की तो उन्होंने सारे ब्रजवासियों को जोड़ा और गोवर्धन के भक्तों ने सबने गोपाल विग्रह की प्रसन्नता के लिए जमीन अर्पण की, गायें अर्पण की। प्राचीन समय में हमारी संपत्ति मापी जाती थी ये देखकर कि कितनी गायें हैं और कितनी जमीन है। आज हमारे देश में ऐसी स्थिति है कि आप कुत्ते बिल्ली शहर में रख सकते हो और गाय को नहीं। आश्चर्य की बात है कि नहीं? हमारे चंडीगढ़ शहर में हमारा एक मंदिर है 36 सेक्टर में, जिसमें हमारी गायें भी थी। तो को एक साल पहले सरकार का नोटिस आया, आप गौशाला को शहर में नहीं रख सकते। दूसरे लोग तो गायों को छोड़ देते हैं घूमने के लिए, पर हम कभी बाहर नहीं छोड़ते थे। हमारी 4 एकड़ की जमीन है, उसी में गायों की देखभाल की जाती थी। तो हमने कहा भाई आप नोटिस क्यों भेज रहे हो? अब कुत्ते बिल्लियों को चंडीगढ़ में रख सकते हो और गाय को नहीं रख सकते, और हम तो अपनी जमीन के अंदर रख रहे हैं। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का एक नोटिस जजमेंट आया है, गाय को शहर के बीच में नहीं रख सकते। हमने कहा ये अच्छा नोटिस है, सुप्रीम कोर्ट को बोलो कुत्ते बिल्लियों को बंद करें। तो आज की स्थिति ऐसे है, अगर आप गाय को रखना भी चाहो तो शहरों में नहीं रख सकते, है कि नहीं? और खेती कहाँ है आज लोगों के पास? आज तो खेती है ही नहीं, एक बिल्डिंग है उसके बिल्कुल पास में अगली बिल्डिंग बन जाती है। तो प्राचीन समय में संपत्ति मापी जाती थी ये देखकर कि कितनी गायें हैं, कितनी खेती है। तो गोवर्धन के भक्तों ने अपने गोपाल विग्रह की प्रसन्नता के लिए गायों को भेंट के रूप, दान के रूप में दिया और जमीन। तो थोड़े ही समय में गोपाल विग्रह जो थे बहुत बड़े जमींदार बन गए। लोगों ने बहुत जमीन दी और कई हजारों गायें दी। इन गायों के दूध जो है उसे भगवान की खीर, भगवान का मक्खन वगैरह बनता है, भगवान का अभिषेक होता है। तो इस प्रकार माधवेंद्र पुरी ने सब गोवर्धन के भक्तों को जोड़कर गोपाल विग्रह की स्थापना की। रोज अलग अलग घरों से भोजन बनकर आता था गोपाल विग्रह की प्रसन्नता के लिए, और गोपाल विग्रह की स्थापना की, उसके पीछे एक बहुत बड़ा पत्थर रखा, जैसे आपकी राधा कुंज बिहारी विराजमान हैं सिंहासन के ऊपर, तो उन्होंने इस एक बहुत बड़ा पत्थर रखा जिसमें जिसके साथ जिसके ऊपर ये गोपाल विग्रह की स्थापना की। तो लगभग 2 साल बीत गए थे और बड़े धूमधाम से ब्रिजवासियों ने, गोवर्धन के भक्तों ने किसकी, गोपाल की पूजा की। 2 साल के पश्चात माधवेंद्रपुरी को फिर से एक सपना आया और माधवेंद्रपुरी जब गोपाल की स्थापना की तो रोज अन्नकूट भी किया जाता था, जैसे भगवान ने किया था जब वो इस पृथ्वी पर प्रकट थे। तो 2 साल के बाद माधवेंद्रपुरी का एक सपना आया, जिस सपने में भगवान ने इस प्रकार से कहा, भगवान ने कहा, मैं तुम्हारा आभारी हूं कि तुमने मेरी स्थापना कर दी है, पर मुझे अभी भी गर्मी लग रही है, तो मुझे जरा मेरे शरीर को ठंडा करने के लिए मेरे लिए चंदन लेकर आओ। चंदन आपने देखा होगा कि हम इस्कॉन के मंदिरों में चंदन लगाते हैं भगवान पर गर्मी के मौसम में, सर्दी में नहीं लगाते। चंदन आप क्यों लगाते हो? शरीर को ठंडा करने के लिए। तो भगवान ने माधवेंद्रपुरी को आदेश दिया कि मुझे गर्मी लग रही है, मेरे लिए चंदन लेकर आओ। तो माधवेंद्रपुरी, वो तो भगवान के दास थे, उन्होंने ये नहीं कहा, अरे भाई मैं चंदन कैसे लाऊंगा, चंदन लाने के लिए 2000 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी, यहाँ से आपने किधर की यात्रा करनी है, तो आप जहाज में चले जाते हो या ट्रेन में या मोटर में या मोटरसाइकिल में, है कि नहीं? पर उन दिनों में तो ये सुविधा नहीं थी, एक ही साधन था यात्रा का, वो क्या था? पद यात्रा। जैसे कि हमारे भक्त पद यात्रा करते हैं, तो एक ही साधन था एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचने का, वो था पैदल जाना। कई बार आज के वातावरण में जब आप इसका सोचते हो तो आप सोचते होंगे, अरे ये तो असंभव है, पर इसका उनके भक्तों द्वारा भी पद यात्रा हो रही है जो पूरे भारत में घूम रही है लगभग 20 सालों से, तो असंभव नहीं है। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, पर आज हम खराब हो गए ये सब आधुनिक सुविधाओं के द्वारा। तो माधवेंद्रपुरी ने कोई शिष्य को ब्राह्मण दीक्षा लेकर देकर उन पर ये जिम्मेदारी सौंप दी इन विग्रह का देखभाल करने के लिए, और वो चले कहाँ, उड़ीसा की ओर, और रास्ते में दक्षिण भारत की ओर होते गए। रास्ते में वो मिले अद्वैताचार्य को शांतिपुर में, और हर साल शांतिपुर में इस्कॉन के भक्तों द्वारा एक उत्सव भी होता है गौर पूर्णिमा के निकट। तो शांतिपुर में गए तो वहाँ अद्वैताचार्य ने माधवेंद्रपुरी से दीक्षा ग्रहण की, और फिर अद्वैताचार्य माधवेंद्रपुरी जी पहुँचे कहाँ, उड़ीसा में। उड़ीसा में पहुँचे, एक शहर है जगन्नाथपुरी से शायद 4 घंटे की दूरी पर, जिसका नाम है रेमुना, और वहाँ एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है जिसका नाम है राधा किशोर गोपीनाथ। माधवेंद्रपुरी जब वहाँ पहुँचे उस मंदिर में, तो उनकी इच्छा हुई, मुझे यहाँ के पुजारियों से पूछने दो कि वो भगवान की सेवा कैसे करते हैं। भगवान भक्तों की इच्छा रहती है कि भगवान के आर्च विग्रह को अच्छे से अच्छी वस्तु दी जाए, अच्छे से अच्छी सुविधा दी जाए। क्यों? क्योंकि आज जब विग्रह और भगवान में अंतर नहीं, जो कम बुद्धि के व्यक्ति हैं, जब वो भगवान के आर्य विग्रह को देखते हैं, तो क्या कहते हैं? अरे ये तो पत्थर की मूर्ति है, इसमें भगवान थोड़ी है। कहते ना, कहते ये तो पत्थर है, ये वैष्णव मूर्खों को देखो, कहते इसमें भगवान है। और ये वैष्णव मूर्ख कहते हैं, हमने भोग लगा दिया, भगवान ने प्रसाद खा लिया, और थाली तो वैसे की वैसे ही भरी हुई है। आप और हम जब खाते हैं तो हमारी थाली खाली हो जाती है, सच बात है। भगवान जब खाते हैं थाली भरी हुई रहती है, तो वो हमें मूर्ख समझते हैं। पर हम मूर्ख नहीं, वो मूर्ख है। क्यों? क्यों? क्योंकि जो वैष्णव है वो समझते हैं कि भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। ये नेक तत्व जो हैं भगवान से ही उत्पन्न होते हैं, और जब उनका उपयोग किया जाए भगवान के सेवा में, चाहे लक्कड़ हो, पत्थर हो, लोया हो, और भगवान का रूप बनाया जाए शास्त्रों के वर्णन के अनुसार, और जब इस विग्रह की स्थापना की जाए आचार्य के द्वारा, तो फिर इस विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसलिए वैष्णव जब भगवान के विग्रह को देखते हैं, कहते हैं यहाँ है भगवान, स्वयं उपस्थित है, और इसलिए उनकी प्रशंसा के लिए बड़े उत्साह से उनकी सेवा की तैयारी करते हैं, उनकी सेवा में जुड़ते हैं। तो जब माधवेंद्रपुरी पहुंचे रेमुना में, उस रेमुना के मंदिर का बड़ा गहरा इतिहास था, और वो शहर, वो जो मंदिर था, उस मंदिर में भगवान की प्रसन्नता के लिए बहुत अच्छा भोजन खिलाया जाता था। खास करके सुबह के समय भगवान को एक खीर खिलाते थे, उस खीर का नाम था अमृत केली। अमृत केली मतलब कि अमृत जो कि स्वर्ग में पिया जाता है, अमृत जो कि स्वर्ग में प्राप्त होता है। उस मंदिर में जो खीर भगवान को भोग लगाई जाती थी, वो जो खीर थी उसका इतना अच्छा टेस्ट था कि भगवान की खुशी के लिए भक्त बनाते थे। तो माधवेंद्रपुरी ने सोचा कि इस मंदिर में इतने प्रेम से भगवान को भोजन खिलाते हैं, मुझे यहाँ देखने दो कि मुझे भी चखने का मौका मिल जाए कि भगवान का भोग कैसे बनता है, कैसे टेस्ट आता है। तो मैं भी उसी मिठास के साथ जब मैं अपने गोवर्धन में लौटूंगा, तो अपने गोपाल के लिए उसी प्रकार, उसी मिठास का भोजन है, अमृत है, खीर है, बनाऊंगा। ये था उनका विचार। पर ये जो चखने का विचार था, ये विचार उनके हृदय में जब उत्पन्न हुआ, उस परिस्थिति में जबकि भगवान का भोजन भोग लग रहा था, नियम यह है कि जब आप भोग बना रहे हो, आपकी विचार ये रहना चाहिए, ये भगवान के लिए मैं बना रहा हूं, ये नहीं मैं अपने लिए बना रहा हूं, भोग लगाते ही मैंने खा लेना है। और भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मुझे भोग लगाए बिना खाता है वो केवल पाप खा रहा है। इसलिए वैष्णव का सिद्धांत है कि हम जो खाएं उसे भगवान के चरणों में अर्पण करें। अर्पण करें किस रूप, और अर्पण करते हैं तो क्या बन जाता है? ये प्रसाद बन जाता है। प्रसाद का अर्थ है भगवान की कृपा। हम जब मंत्रों के उच्चारण से अपने भोजन को भगवान के चरण कमलों में अर्पण करते हैं, परम भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्रों से और कानों से स्वीकार कर लेते हैं, नेत्रों से देखते हैं, कानों से आपकी प्रार्थना सुनते हैं और भगवान इसे स्वीकार कर लेते हैं। तो ये है भक्तों का भाव। खाएं तो केवल प्रसाद खाएं और कुछ नहीं। और ये भी कहा गया है कि जब हम मंत्रों के उच्चारण से भगवान को भोग लगाते हैं तो ये प्रसाद को भगवान अपने अभी थूक को इस खाने में मिला देते हैं। अगर कोई व्यक्ति आप पर थूके तो आपको गुस्सा आ जाता है कि नहीं? कई बार बात करते करते कोई थूक जाता है, आप क्या कहते हैं, अंधे क्या, दिखता नहीं है क्या? पर जो वैष्णव हैं भगवान के प्रसाद के लिए तरसते हैं और इसलिए उनका भाव ये रहता है, खाना है तो केवल प्रसाद खाना है। जब प्रभुपाद जी ने इस संस्था की स्थापना की अमेरिका में, तो उन्होंने साथ में इस योजना की भी स्थापना की, प्रसाद खाएंगे सब। तो कई लोग आते थे केवल प्रसाद ग्रहण करने के लिए और उसके द्वारा आस्ते आस्ते जुड़ गए कृष्ण भक्ति में। कृष्णा प्रसाद के प्रति सबका आकर्षण रहता है। आप लोग पूना में भी शायद अनुभव करते होंगे, हर जगह तो करते हैं, आप कीर्तन हो या लेक्चर हो तो उदाहरण के लिए 400-500 लोग होंगे और प्रसाद के वक्त 800-900। ये तो अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है, केवल भारत का अनुभव नहीं। अब रशिया में जाओ, लेक्चर में होंगे 400, प्रसाद के वक्त होंगे 700। अमेरिका में भी वही अनुभव है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है कि प्रसाद के प्रति सबका आकर्षण रहता है। तो महादेवपुरी की इच्छा थी कि ये प्रसाद चखने का अवसर मिल जाए तो इसके द्वारा उन्हें अनुभव हो जाएगा और फिर ये उसी प्रकार से अपने गोपाल विग्रह के लिए बना सकेंगे। जो भक्त है वो एक दूसरे से सीखते हैं, जब वो देखते हैं कि किसी और में कोई कला है तो उनकी भावना होती है कि हम भी इस कला को अनुकूल करें और भगवान के सेवा में उपयोग करें। जब एक समय चैतन्य महाप्रभु जी अपने साथियों के साथ गुंडीचा मंदिर को साफ कर रहे थे, गुंडीचा था इंद्रदुम्न महाराज की पत्नी का नाम, इंद्रदुम्न महाराज ने जगन्नाथपुरी मंदिर की स्थापना की थी हजारों साल पूर्व। तो गुंडीचा मंदिर की जब वो सफाई कर रहे थे, महाप्रभु जी ने अपने सब भक्तों को जोड़ा था इस सेवा में और सारे जो भक्त थे हरि नाम का उच्चारण कर रहे थे, दूर दूर से पानी आ रहा था और वो सफाई कर रहे थे। और महाप्रभु जी जब देखते थे कि कोई व्यक्ति अच्छी तरह साफ कर रहा है और कोई किसी स्थान में कम गंद को इकट्ठा कर रहा है, तो जो कि ज्यादा गंद को इकट्ठा कर रहे थे उससे कहते थे उसको सिखाओ कि वो कैसे ज्यादा अच्छी तरह साफ करे। तो ये इस्कॉन मंदिरों में भी हम देखते हैं, अगर किसी में कोई कला है तो दूसरे वैष्णव बड़े प्रशंसा से उसे शिक्षा लेने के लिए आ जाते हैं। तो वहाँ महादेवपुरी की इच्छा क्या थी कि मुझे यहाँ खीर चखने का मौका मिल जाए। उन्होंने वहाँ के पुजारियों से पूछा, भाई तुम क्या भोग लगाते हो, कितने बजे क्या बनाते हो, कैसे बनाते हो? और जब महादेवपुरी को पता लगा कि भोग चखने की इच्छा हुई है, जब ये भोग लग रहा है, तो फिर महादेवपुरी शर्म उन्हें दुख आया कि जब भगवान भोग खा रहे थे मेरे मन में भावना हुई कि मैं भी इस भोग को चखूं। तो महादेवपुरी ने चखे बिना उस मंदिर को छोड़ दिया और एकांत में शहर के एक स्थान में जाकर बैठकर भजन करने लगे। भगवान जो हैं प्रयास करते हैं भक्तों की सेवा करने के लिए, भक्त जो हैं प्रयास करते हैं भगवान की सेवा करने के लिए। भक्त की इच्छा रहती है भगवान की सेवा करें, भगवान की इच्छा रहती है भक्तों की सेवा कर रहे हैं। और भक्त जो है सेवा करना चाहता है पर लेना नहीं चाहता। भगवान गोपीनाथ ने देखा कि मेरा भक्त आया था माधवेंद्रपुरी चखे बिना खीर को छोड़कर चले गए। भगवान ने चापलूसी करके एक खीर के प्याले को छुपा दिया, कहां? ऑल्टर के पर्दे के पीछे, क्योंकि पुजारी अक्सर तो जो भोग लगाते हैं फिर उसको उठाकर बाहर ले आते हैं, फिर आपको बांटते हैं प्रसाद के रूप में। भगवान ने उस प्याले, एक खीर के प्याले को लेकर छुपा दिया कि कोई देख नहीं पाए, पर्दे के पीछे। और रात को सपने में उस पुजारी को कहा कि मैंने एक खीर का प्याला चुरा कर ऑल्टर के पर्दे के पीछे रख दिया है। जैसे आपके पूना मंदिर में भी ऑल्टर है, ऑल्टर के पीछे पर्दा है। तुम उस खीर के प्याले को लेकर बाजार के बीच में जाना, इस स्थान पर जहां के महानंदपुरी नाम का एक संत उपस्थित होगा और उसे प्याला दे देना। पुजारी ने जब ये सपना देखा वो तो आश्चर्यचकित हो गया। भगवान ने खीर का प्याला चुरा कर चापलूसी करके छुपा दिया है, ये कैसे संभव हो सकता है, है ना? कैसे? तो पुजारी गए, जैसे कि पुजारी लोग जल्दी उठते हैं भगवान को जगाने के लिए, इस्कॉन के मंदिरों में 4:30 बजे मंगल आरती होती है, पर पुजारी तो 3 बजे उठ जाते हैं, 3:30, 4:15, 4 बजे भगवान को जगाते हैं, भोग लगाते हैं। तो पुजारी जब गया तैयार होकर तो उसने देखा ये सपना सच है, सचमुच उस पर्दे के पीछे एक खीर का प्याला था। तो पुजारी ने कहा, पुजारी को पता नहीं था महानंदपुरी कौन है, तो पुजारी ने कहा कौन है ये भाग्यशाली व्यक्ति महानंदपुरी जिसके लिए भगवान ने खीर का प्याला चुरा कर पर्दे के पीछे रख दिया है। तो भगवान ने सपने में ये भी कहा था कि कहां महानंदपुरी प्राप्त होंगे, तो इस ये पुजारी गए शहर में और कहने लग चुटक चिल्लाने दे, यहां कोई महानंदपुरी नाम का कोई व्यक्ति है? तो महानंदपुरी ने जब सुना कि उनके नाम को कोई पुकार रहा है, उन्होंने कहा हाँ मैं हूं। तो पुजारी ने कहा कि तुम्हारे भाग्य की कोई सीमा नहीं। और पुजारी ने पूरी कथा सुनाई कि किस प्रकार भगवान ने ये खीर का प्याला चुरा के रखा था, किसके लिए? उनके लिए। तो महानंदपुरी अत्यंत प्रसन्न हुए, उनकी इच्छा थी इस खीर को चखने के लिए, है कि नहीं? खीर को चखने के लिए गए थे पर चखे बिना निकल गए, क्योंकि उन्हें ये दुख हुआ कि इच्छा प्रकट की उन्होंने जबकि भगवान को भोग लग रहा था। तो भगवान ने क्या किया, खुद खीर के प्याले को छुड़ा दिया अपने भाग के लिए। तो महानंदपुरी ने खीर ली, वो थी एक मटके में, उसके थोड़े थोड़े टुकड़े किए और रोज एक एक टुकड़े को चखते थे, क्योंकि भाग्य तो भगवान ने चोरी की थी ये प्याला उनके लिए। तो पूरे शहर में ये खबर फैल गई, क्या शहर में खबर फैल गई कि हमारे शहर में कोई महानंदपुरी नाम का व्यक्ति है जिसकी खुशी के लिए भगवान ने क्या चुराया था, खीर चुराई थी, अमृत अकेली। तो जहां भी महानंदपुरी जाते थे भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, जहां भी जाते थे भीड़ हो चुकी इकट्ठी जाती थी। आज के वातावरण में अगर कोई फिल्मी कलाकार किधर पहुंच जाए या कोई क्रिकेट स्टार पहुंच जाए तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है कि नहीं? संत पहुंचे तो उसकी कदर नहीं होती। पर प्राचीन समय में रिवाज अच्छा था, संतों को आदर दी जाती थी, जहां भी महानंदपुरी जाते थे बहुत भीड़ हो जाती थी। पर जो संत हैं, भगवान के भक्त हैं, वो ये नहीं चाहते कि लोग उनका गुणगान करें। पर आपने देखा होगा कि जब आपके राजनीतिक लोग भाषण देने जाते हैं तो उनको जिंदाबाद कहने के लिए बहुत लोग होते हैं, है ना, और उनको सुनने के लिए भरे जा लोग काफी लोग होते हैं। फिर इन लोगों को वो ट्रकों में पैसे देके भर के लाते हैं, आपको मालूम है। वो ही लोग जाएंगे बीजेपी का भाषण सुनने ताड़ी मारने के लिए, फिर आधे घंटे बाद वही लोग जाएंगे कांग्रेस के प्रवचन को सुनकर वहाँ ताड़ी मारने के लिए। वो तो जाते जहाँ भी पैसा दे रहा, और जब तक बहुत लोग नहीं हो ये राजनीतिक नेताओं का दिल नहीं भरता, तो इसके लिए जितने बड़े नेता उतने ज़्यादा ट्रक लाने पड़ते हैं पैसे दे के। आजकल मैं पढ़ रहा था कि लोगों को ट्रक किराए पर नहीं मिल रहे, क्योंकि ये सारे ट्रक ये राजनीतिक नेताओं ने ले लिया है इलेक्शन के समय, बसों में लोगों को ट्रक्स में भर के लाना जिंदाबाद बोलने के लिए। पर जो माधवेंद्रपुरी थे उन्हें ये पसंद नहीं था। जहाँ भी वो जाते थे भीड़ हो जाती थी, कहते देखो ये है वो महान संत जिसके लिए भगवान ने खीर का प्याला छुड़ाया। तो माधवेंद्रपुरी रेमना छोड़कर भाग गए चुपचाप, कहाँ, जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी जब वो पहुंचे तो वहां उन्होंने उस मंदिर के अध्यक्षों से कहा किस उद्देश्य से वो आए हैं, किस उद्देश्य से आए थे, क्या लाने के लिए, चंदन लाने के लिए। तो जगन्नाथपुरी के पुजारियों ने माधवेंद्रपुरी को सहयोग दिया, सब चंदन का प्रबंध किया और साथ में एक व्यक्ति भी दिया, और माधवेंद्रपुरी अपने कंधों में चंदन उठाकर रवाना हो गए। किधर के लिए, गोवर्धन के लिए। अंदाजा लगाओ, चंदन उठाकर ला रहे थे अपने कंधों में उड़ीसा से गोवर्धन तक। आप लोग ये करने को तैयार हो? पर और उन दिनों में ईस्टर्न इंडिया में भी मुसलमानों का राज्य था, तो चुंगी में हर जगह मुसलमान अधिकारी थे। तो जगन्नाथपुरी के मंदिर के अध्यक्षों ने उन्हें पत्र दिया कि जो चंदन है हमारे मंदिर से दान के रूप में आ रहा है, कि चुंगी वाले उन्हें तंग नहीं करें। तो माधवेंद्रपुरी चले रेमुना से चंदन को कंधे में उठाकर गोवर्धन के लिए। पर रास्ते में वो फिर से रुके, कहाँ, रेमुना में। रेमुना रास्ते में आता है, अगर आप जगन्नाथपुरी से शायद गोवर्धन की तरफ आ रहे हो। तो रास्ते में उन्होंने कहा एक रात मुझे इस मंदिर में रुकने दो। तो जब उस मंदिर में रुके एक रात के लिए, तो उस रात को माधवेंद्रपुरी को फिर से एक सपना आया। ये उनका तीसरा सपना था। पहला सपना था कब, जबकि भगवान ने कहा गोपाल मूर्ति को खोद कर लाओ। दूसरा सपने में आदेश दिया था कब, जब कहा भगवान ने मेरे को गर्मी लग रही है अभी भी, चंदन लेकर आओ मेरे पास। और तीसरा आदेश भगवान ने सपने में दिया जबकि माधवेंद्रपुरी यमुना गोपीनाथ मंदिर में पहुंचे। तो जब माधवेंद्रपुरी लौटे एक रात के लिए गोपीनाथ मंदिर में, एक रात के लिए रुके थे, तो उस रात को गोपीनाथ जी ने, उस रात को गोपाल ने माधवेंद्रपुरी को एक नया आदेश दिया। गोपाल ने कहा कि मैं तुम्हारा आभारी हूं कि तुमने मेरे आदेश का पालन किया और तुम गए कहां, गोवर्धन से जगन्नाथपुरी तक चंदन लाने के लिए। मैं तुम्हारे से बहुत खुश हूं कि तुमने इतनी बड़ी यात्रा की मेरी खुशी के लिए, चंदन लाने के लिए। पर मेरे में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं। तो तुम इस चंदन को उठाकर वापस रेमुना तक लाने की बजाय इस चंदन का उपयोग कर दो गोपीनाथ जी को सजाने के लिए। तो मादनपुरी को ये भी सपना आया। तो अगले दिन सुबह वो गए गोपीनाथ मंदिर के पुजारी के पास। उन्होंने कहा, पूरी पूरी कथा सुनाई किस प्रकार भगवान के आदेश के अनुसार वो आए थे चंदन लेने के लिए, और किस प्रकार अभी भगवान ने आदेश दिया है। तो उन्होंने गोपीनाथ मंदिर के पुजारी को पूरी कथा सुनाई और कहा, ये चंदन ले लो तुम, लगभग 70 kg चंदन था, ये चंदन तुम ले लो। तो गोपीनाथ मंदिर के पुजारी तो बहुत खुश हुए, कोई आपको आकर 50-60 kg चंदन दे दे आप खुश नहीं हो जाएंगे? तो वो तो बहुत ही खुश हुए। और फिर माधवेंद्रपुरी ने गोपीनाथ विग्रह को चंदन से सजाया। तो एक दिन के लिए नहीं, 21 दिनों के लिए उन्होंने 21 दिन के लिए लगातार ये चंदन को चंदन से सजाया गोपीनाथ जी की मूर्तियों को। तो भगवान ने तो सपने में कह दिया था क्या, मेरे में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं। जब हम भगवान के विग्रह को देखते हैं हमें ये नहीं सोचना चाहिए इनमें अंतर है। भगवान अपने आप को अनेक विग्रहों में एक साथ उपस्थित कर सकते हैं। तो ये जो चंदन यात्रा का उत्सव है जो हम अनुभव कर रहे हैं आपके पूना मंदिर में और इस्कॉन के सब मंदिरों में, ये जो चंदन यात्रा का उत्सव है ये आरंभ हुआ था किसके द्वारा, माधवेंद्रपुरी जी के द्वारा। सबसे पहले मूर्तियां जिनको चंदन लगाया गया था वो थी गोपीनाथ की मूर्तियां रेमुना में। तो आज सारे विश्व में खास करके आप वृंदावन में जाओ तो ये तो बड़े धूमधाम से मिलाया जाता है। हमारे कृष्णा बालराम मंदिर में एक चंदन यात्रा वाले दिन जो परसों था, भगवान को कोई वस्त्र नहीं पहना दे, पूरे चेहरे को शरीर को सजा देते हैं चंदन के साथ, चंदन के ऊपर हार हारे हारे इत्यादि। तो ये चंदन यात्रा का उत्सव हुआ था, आरंभ हुआ था लगभग 700 साल पूर्व। और ये पूरी कथा को आप प्राप्त करते हो कौन से ग्रंथ में, चैतन्य चरितमृत नाम के ग्रंथ में और चैतन्य भागवत में। तो ये चंदन यात्रा का उत्सव हर साल इस समय वैष्णव भक्त मनाते हैं और भगवान को ठंडा करते हैं, कैसे, चंदन के द्वारा। तो आप एक चीज पूछ सकते हो, माधवेंद्रपुरी को 3 बार भगवान ने आदेश दिया सपने में, हमें भी सपना आता है, आप लोगों को भी शायद सपना आता होगा, आता है कभी? तो कई बार सपने में आपको आदेश कभी मिल जाए तो उसको, या आप ये कहो जैसे माधवेंद्रपुरी को सपने में आदेश मिला, हम भी राह देखने में सपने में भगवान कब आदेश देंगे, और जब आदेश देंगे तो ही हम कुछ कार्य करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। नहीं, वहां प्रभुपाद जी ने कहा कि जब आप भगवान के शुद्ध भक्त हो तो जब भगवान आपको डायरेक्टली आदेश देंगे, और जब तक आप शुद्ध भक्त नहीं बनते तो आप कहां से आदेश लो, भगवान के प्रतिनिधियों के द्वारा और भगवान के ग्रंथों के द्वारा। माधवेंद्रपुरी तो पैदाइशी शुद्ध भक्त थे, और माधवेंद्रपुरी पैदाइशी शुद्ध भक्त थे और भगवान ने उन्हें इसलिए सपने में आदेश दिया, और हमेशा ये आदेश जो था सपना जो था सत्य था। तो माधवेंद्रपुरी थे जैसे हमने कहा चैतन्य महाप्रभु जी के परम गुरु, पर माधवेंद्रपुरी के अनेक शिष्य थे। एक प्रसिद्ध शिष्य का हमने वर्णन किया अद्वैताचार्य, एक और उनके शिष्य थे जो महाप्रभु जी के गुरु थे जिनका नाम था ईश्वरपुरी, और इसके अलावा एक और गुरु थे, एक और शिष्य थे जिनका नाम था रामचंद्रपुरी। तो रामचंद्रपुरी और ईश्वरपुरी में दोनों थे गुरु भाई, पर अंतर था दिन रात का। ईश्वर पूरी की हमेशा इच्छा थी गुरु की सेवा करे, वैष्णव की सेवा करे, संतों की सेवा करे। और रामचंद्र पूरी, उनका सदा यह भाव रहता था किस प्रकार किसी संत में कमजोरी निकाली जाए, किस प्रकार किसी संत की आलोचना की जाए। जैसे कि जब जगन्नाथपुरी में सन्यासी लोग आते थे तो रामचंद्रपुरी उनकी खाने के लिए वहां प्रसाद लाते थे, और सन्यासी कहते थे अरे भाई इतना नहीं चाहिए खाने के लिए, हम तो सन्यासी हैं, थोड़ा सा दो नाम के लिए। नहीं नहीं नहीं, ये तो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है, इसको आप कैसे नहीं खाओगे, नहीं खाओ तो पाप है। तो इस प्रकार वो जबरदस्ती सन्यासियों को ज्यादा प्रसाद खिला देते थे, और जब प्रसाद वो खा लेते थे तो फिर क्या करते थे, उनकी टांग को खींचते थे। जैसे आप लोग कभी कभी दूसरों की टांग को खींचते हो, आलोचना करते थे, क्या कहते थे, अरे भाई देखो संन्यास तो ले लिया दुनिया को दिखाने के लिए, और खाते हैं गृहस्थ से भी ज्यादा। तो उनकी ये आदत पड़ गई थी संतों की आलोचना करने की। तो एक दिन रामचंद्रपुरी गए महाप्रभु जी के घर। गर्मी का मौसम था, लकड़ी की फर्श थी, तो जब लकड़ी की फर्श होती है तो जो चींटियां हैं वो भी ऊपर आ जाती हैं, आपको पता है। वैसे तो चींटियां नीचे भी रह लेती हैं अंडरग्राउंड में, और उनके गर्मी लगती है तो ऊपर आ जाती हैं। तो जब वो आए महाप्रभु जी के घर में कमरे में, उन्होंने देखा अनेक चींटियां हैं वहां, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ तो चैतन्य ने मिठाई खाई होगी बहुत, इसलिए वो मिठाई गिर गई और ये सब चींटियां आई हैं इधर। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा था एक सन्यासी के चरित्र में बिल्कुल कलंक नहीं होना चाहिए, और उन्होंने कहा कि एक सफेद चादर में अगर एक काला दाग हो तो क्या होगा, वो दिखेगा, है कि नहीं। काली चादर में काला दाग नहीं दिखेगा, वो सफेद चादर में काला दाग दिखेगा ना, दूर से भी दिखेगा। तो उसी प्रकार उन्होंने कहा कि सन्यासी के व्यवहार में कोई ऐसी कमी नहीं होनी चाहिए। तो जब रामचंद्रपुरी ने आकर उनकी आलोचना की और कहा कि ये सन्यासी को देखो, सन्यास ले लिया है पर मिठाई इतनी खाता है, बहुत खाता है, तो महाप्रभु ने खाना अपना बिल्कुल कम कर दिया, बिल्कुल कम, इतना कम कर दिया कि जो महाप्रभु जी के सेक्रेटरी थे जिनका नाम था गोविंदा, और जो महाप्रभु जी के दूसरे वैष्णव भक्त थे, उनके हृदय में क्रोध आया। उन्होंने कहा इस रामचंद्र पूरी के कारण हमारे महाप्रभु जी ने खाना अपना इतना कम कर दिया। क्योंकि महाप्रभु जी ने, हालांकि उसने आलोचना की, महाप्रभु ने इसे गंभीरता से स्वीकार किया। तो उनकी आदत थी भक्तों की निंदा करना, भक्तों की निंदा करना की जो आदत है बड़ी खतरनाक आदत है। जैसे कैंसर एक स्थान से शुरू होता है फिर फैलते जाता है, ये आदत भी हम शुरू करते हैं एक भक्त के साथ तो आस्ते आस्ते फैल जाती है। और देखिए रामचंद्रपुरी का उदाहरण, पहले वो करने लगे सन्यासियों की निंदा, हम फिर ये करने लगे चैतन्य महाप्रभु जी की निंदा, उनकी हंसी उड़ा रहे थे। फिर महाचंद्रपुरी जब अपने अंतिम दिनों में थे इस पृथ्वी पर, तो एक दिन वो कह रहे थे हे कृष्णा, मेरे हृदय में आपके प्रति एकमात्र प्रेम भी नहीं है, एक बूंद भी नहीं है, कहाँ हो तुम, भक्त शुद्ध भक्त और भक्तों में क्या अंतर। शुद्ध भक्त ये सोचते हैं हमारे हृदय में एक बूंद प्रेम भी नहीं है, और जो ढोंगी भक्त हैं वो ऐसा दिखावा करते हैं कि आप सोचो कि उनके हृदय में कई लीटरों का प्रेम है। वो जब नाचेंगे तो उनकी आंखों से आंसू बहेंगे, जो सोएंगे और अनेक लक्षण ऐसे प्रकट करेंगे। कई बार हम वृंदावन में देखते हैं कई लोग कीर्तन कर रहे हैं, जमीन में लेट रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, शुद्ध भक्ति के लक्षणों को प्रकट करते हैं, पर असल में दिखावा होता है। तो शुद्ध माधवेंद्रपुरी तो भगवान के शुद्ध भक्त थे, इसलिए वो कह रहे थे मेरे हृदय में भक्ति का एक बूंद भी नहीं है। उसका ये अर्थ है कि बूंद नहीं है भक्ति का। तो रामचंद्रपुरी कहने लगे भक्ति भ्रम का बूंद नहीं है, भगवत प्रेम नहीं है, तो ब्रह्मांड का चिंतन करो ना। मतलब कि अपने गुरु को कह रहे थे तो मायावादी बन जाओ। तो गुरु जी ने इतने क्रोधित हुए कहा कि तो चले जाओ मेरी नजरों से पार, क्योंकि अगर तुम्हें देखते देखते शरीर में त्यागूंगा तो जीवन जो है मेरा बेकार माना जाएगा। अंते नारायण स्मृति, अंतिम समय में हमारा बुद्धि होनी चाहिए कहां, भगवान के चरण कमलों में। तो इसकी तुलना में एक और भक्त है जिनका नाम था ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी जो भक्त थे उनमें यह भावना थी क्या, गुरु की सेवा की जाए। उन्होंने गुरु की सेवा की बहुत ही निम्रता के साथ। तो उनके गुरु माधवेंद्रपुरी उनकी सेवा से इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने ये वर दिया कि तुम एक माध्यम बनोगे सारे विश्व में कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए। तो ईश्वरपुरी बने माध्यम और उनके द्वारा महाप्रभु जी और प्रभुपाद जी के द्वारा कृष्ण भक्ति पहुंची है सारे विश्व में। तो इससे हमें ये छूट है हमारे पास, हम चाहें तो रामचंद्रपुरी का व्यवहार अनुकूल कर सकते हैं और चाहे तो ईश्वरपुरी का। तो कौन सा आप करना चाहते हो, रामचंद्रपुरी का प्रभाव नहीं स्वभाव नहीं। तो ये थी संक्षेप में कथा इस चंदन यात्रा की। तो हमारे वैष्णव भक्तों के वो देखते हैं कि हर साल हम अनेक उत्सव मनाते हैं। अगर देखा जाए ध्यान से उत्सव ही उत्सव है कृष्ण भक्ति में। एक गौर पूर्णिमा समाप्त हुई तो फिर रामनवमी आ गई है ना, रामनवमी समाप्त हुई तो अभी नृसिंह चतुर्दशी आने वाली है। ये तो प्रमुख उत्सव है चंदन यात्रा। फिर झूलन यात्रा आएगी थोड़ी देर बाद, फिर रामनवमी, रथदशमी, बालराम जयंती, गोवर्धन शील, गोवर्धन पूजा। तो अनेक उत्सव हैं जिनके द्वारा जो भक्त हैं भगवान की सेवा में जुड़ते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भारमित संघ का एक ही मूल उद्देश्य है, वो यह है कि पूरे मानव समाज को ये शिक्षा दी जाए जिसके आधार पर वो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो हम भक्तों को रुचि लेनी चाहिए भगवान के नामों में, भगवान की लीलाओं में, भगवान के आदेश में। जैसे कि हमने संक्षेप में आपको ये माधवेंद्रपुरी की कथा सुनाई जो कि संबंधित है आज के इस उत्सव के साथ, चंदन यात्रा के साथ। तो इस प्रकार हमें भगवान की अनेक लीलाओं की का स्मरण करना चाहिए। माधवेंद्रपुर चैतन्य महाप्रभु जी इस लीला का स्मरण करते थे बार बार। और कृष्णदास काविराज जी कहते हैं हमें इस लीला का स्मरण करना चाहिए। भगवान की अनेक लीलाएं हैं, भगवान का आदेश है। भगवत गीता श्रीमद भागवतम के प्रथम स्कंध में आप देखते हो कि जब परम भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी से अप्रकट हो गए थे तो उनके सनातन साथी और मित्र अर्जुन अधिक दुखी हो गए थे। और फिर अर्जुन ने भगवान की उन लीलाओं का स्मरण किया जो कि भौतिक दृष्टि से असंभव थी, पर महाप्रभु जी की कृपा से और भगवान की कृपा से वो सफल हो पाए। और उसके पश्चात अर्जुन ने भगवान के गीता के श्लोकों का स्मरण आरंभ किया। और जब उन्होंने गीता के श्लोकों का स्मरण आरंभ किया तो अर्जुन को ऐसे महसूस हुआ कि क्या स्वयं भगवान वहां उपस्थित है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि उसी प्रकार हम भक्तों को भी प्रयास करना चाहिए गीता के श्लोकों का स्मरण करने के लिए, उसके द्वारा आपको भी लगेगा कि भगवान आपके साथ उपस्थित हैं, और इसके कारण आप ना बेचैन होगे ना निराश, किसी प्रकार की निराशा अनुभव करोगे। तो आप सबसे यही निवेदन है कि आप गंभीरता के साथ कृष्णा भक्ति को अपनाइए। महान संत रूपा गोस्वामी जी ने कहा है, हे मेरे मित्र, जो भी कीमत भरनी पड़े भरो, पर कृष्ण भक्ति को जीवन में अवश्य ही स्वीकार करो। जैसे कि मान लो अगर आपके शरीर के किसी अंग को चोट आ जाए, तो उस अंग को बचाने के लिए आप कुछ भी कीमत भरने को तैयार रहते हो कि नहीं? तो उसी प्रकार कृष्ण भक्ति को प्राप्त करने के लिए अगर हमें कुछ त्यागना भी पड़े तो त्यागो, तो कृष्ण भक्ति को हाथ से मत फिसलने दो। और कृष्ण भक्ति को हम अनुकूल कर सकते हैं महामंत्र के उच्चारण से। भगवान ने इस महामंत्र में पूरी शक्ति डाली है, और हमारा कर्तव्य क्या है कि हम महामंत्र को उच्चारण करें, दिन हो रात हो, हर समय, सुख हो दुख हो, आदर हो अपमान हो, हर परिस्थिति में हम सबका लक्ष्य क्या है, महामंत्र का उच्चारण करने के लिए। जैसे कि ठाकुर भक्त कहते हैं, ग्रियता को वाणी था को सदा हरी बोली था को, गृहस्थ हो वानप्रस्थ हो सन्यासी हो ब्रह्मचारी हो, कुछ चिंता नहीं। आप सबका प्रथम कर्तव्य क्या है? हाँ, जैसे कि आप कई बार एक दूसरे को मिलते हो तो पूछते क्या धंधा है, का ही तुम क्या धंधा? तो हम सबका एक ही धंधा है, वो क्या है? हरे नाम का जाप करना, और हरे जाप का जाप की महिमा दूसरों को देना। तो चाहे गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो, हम सबका एक ही धंधा है, जो कि इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण ब्राह्मण अमृत से जुड़े हैं। तो कृपा करके हरि नाम को अपनाओ, और हरि नाम की महिमा का उपदेश दूसरों को भी दो, और इस प्रकार आपका जीवन भी सुखी होगा और दूसरों का जीवन भी सुखी होगा। तो ये चंदन यात्रा उत्सव यहाँ भी 21 दोनों के लिए मनाया जाएगा। हो सकता है तो अब आइए रोज भगवान के आचार्य विग्रह का दर्शन लीजिए। जब हम भगवान के दर्शन को लेते हैं तो इस दर्शन के द्वारा हमारा अपवित्र मन जो है शुद्ध हो जाता है। जैसे हम मंदिर क्यों बनाते हैं, पापा जी कहते हैं चैतन्य चतुर्मिता में, ये जो मंदिर हैं ये आध्यात्मिक हॉस्पिटल है। हम जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं इलाज कराने के लिए बीमारी का, तो हम तो बहुत गहराई से बीमार है। क्या बीमारी है हमारी? बीमारी ये है कि माया का बड़ा गहरा प्रभाव है हमारे ऊपर, काम क्रोध लोभ मोह मन मत्सर्य का प्रभाव। तो अगर हम इस प्रभाव से निकलना चाहते हैं तो हमें भक्तों की संगत का लाभ उठाना चाहिए, भगवान के आचार्य विग्रह की उपासना करनी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण हरि नाम को अपनाना चाहिए। क्योंकि हरि नाम एक माध्यम है, जैसे महाप्रभु जी ने कहा, चेत धर्म मार्जनम, और इसके द्वारा आनंद बुद्धि वर्धनम, इसके द्वारा आपको असली आनंद अनुभव होता है, जो कि केवल बढ़ते ही जाएगा और कभी घटेगा नहीं। तो आप सब कृष्ण भक्ति को गंभीरता से स्वीकार कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्णा।